आयुब अध्याय 21। आइए हम आयुब की पुस्तक का अध्ययन जारी रखते हुए अध्याय 21 खोलें। सोपार का भाषण अभी अध्याय 20 में समाप्त हुआ है, जिसमें वो प्रथाओं का उल्लेख करता है और कुछ प्रचलित लोकोकृतियों का संदर्भ देता है। वो आयुब पर लगाए गए अपने दोषों को भी दोहराता है। आयुब 20 अध्याय 4 पद। क्या तू ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन और इस समय का है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया? क्या तू नहीं जानता? मनुष्य तो सदा से ही ये जानता है। वो कुछ प्राचीन लोकोकृतियों आदि को दोहराता है। आयुब 20 अध्याय 5 पद। कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। ये प्राचीन नीति वचनों में से एक है कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। उनके कहने का अर्थ ये था कि आयुब वास्तव में एक दुष्ट और ढोंगी व्यक्ति था। पद 19 में वो आयुब पर दोष लगाता है। आयुब 20 अध्याय 19 पद। उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसको वो बढ़ाने न पाएगा। दूसरे शब्दों में उसने गरीबों को कष्ट प्रदान किया है। इस प्रकार पद 29 के साथ सोपर अपना तर्क समाप्त करता है। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। क्योंकि उसने ऐसे कुकर्म किए हैं, इसलिए उस पर ऐसी विपत्ति और विनाश तो आएगा ही। अध्याय 21 पद 1 से लेकर 3 तक। तब आयुब ने कहा, चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरा कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना। अब क्योंकि आयुब इन लोगों से थक चुका था, वो उनके साथ शिष्टाचार पूर्वक बातें नहीं कर रहा था। मैं आयुब की अवस्था को अच्छी तरह समझ सकता हूं। उसे सहानुभूति की आवश्यकता थी। उसे आवश्यकता थी कि कोई उसकी हालात को समझे, परंतु उसके मित्र तो अपने मन में ये ठान चुके थे कि आयुब दुराचारी और अभक्त मनुष्य है। यद्यपि वे आयुब की चुनौती के अनुसार उसका एक पाप भी बताने में सक्षम नहीं थे, वे पता नहीं क्यों बस एक ही रट लगाए हुए थे कि आयुब तू पापी है। आयुब भी क्या करता, उन्हें कैसे अपनी हालात समझाता? अतः मेरी कुछ तो सुनो कि मैं बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्टा करना। अध्याय 21 पद 4 से लेकर 6 तक। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों न हूं? मेरी ओर चित लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह में कपकपी लगती है। आयुब उनके भ्रम का अनावरण करता है। उनके तर्क कुछ इस प्रकार थे, धर्मी जन फूलता फलता है। यदि आप वास्तव में एक धर्मी जन है तो समृद्धि अपने आप ही आपके चरण छुएगी, और यदि आप दुष्ट है तो आप पर विपत्तियों का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि आप पर पड़ने वाले संकट आपकी अधार्मिकता का प्रमाण है, समृद्धि धार्मिकता का प्रमाण है। ये विचार एक भ्रम था और आज भी है। नए नियम में इस विचार का विरोध पाया जाता है। उस समय कुछ लोग ये सोचते थे कि आत्मिकता धनी होने का साधन है। तिमोथियुस के लिखे पत्र में पौलुस लिखता है, पहला तिमोथियुस 6 अध्याय 5 पद, इन बातों से भाग अर्थात ऐसे विचारों से कि धार्मिकता का जीवन समृद्धि लाता है। आयुब उनके विचारों के खंडन में कहता है, अध्याय 21 पद 7 से लेकर पद 13 तक, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं, उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती, उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं, उनकी गायें बियाती है और बच्चा कभी नहीं गिराती, वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं, वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब वे मरते हैं तब उन्हें दुख उठाना नहीं पड़ता है, वे आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी संतान राग रंग में मस्त रहती है। वे तो दुष्ट है परंतु उनकी मृत्यु उन्हें कष्ट नहीं देती, वे तुरंत ही मर जाते हैं। अध्याय 21 पद 14 और 15। तो भी वो परमेश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, उसका परित्याग करते हैं, वे कहते हैं मैं परमेश्वर की सेवा क्यों करूं, मैं तो वैसे ही सुखी हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत। जहां तक मेरा सवाल है, परमेश्वर बेफिक्र रहे, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने हाल में मस्त हूं। आयुब कहता है कि दुष्ट ऐसे होते हैं, तुम कहते हो कि दुष्ट मारे जाते हैं, वे श्रापित है, वे नाश होते हैं, परंतु मैंने ये नहीं देखा है, दुष्ट प्रायः फूलता फलता है और बहुत समृद्ध होता है। सत्य तो यह है कि भजन संहिता 73 में दुष्ट की इस अवस्था को देखकर भजन का रचने वाला लगभग पथ भ्रष्ट होने वाला था। यदि आप भजन संहिता 73 देखेंगे तो आप वहां ठीक वही पाएंगे जो आयुब यहां कहता है। भजन संहिता 73 पहला पद, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। दूसरे शब्दों में वो एक आधारभूत सत्य का अनावरण कर रहा है कि परमेश्वर भला है। मैं ये जानता हूं, ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास कुछ आधारभूत सत्य हो जिन पर आप स्थिर रहें, जिन पर आप निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ये नहीं जान पाएंगे कि कुछ घटनाएं आपके जीवन में क्यों घटती है। जब भी आपके सामने ऐसी घटना घटे जिसे आप समझ नहीं सकते तो आप केवल उसी बात पर स्थिर रहें जो आप समझते हैं, अर्थात उस आधारभूत सत्य पर कि परमेश्वर भला है। मैं ये जानता हूं और भजन के रचने वाले ने भी कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर भला है। भजन संहिता 73 दो पद से 12 पद, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखों में चर्बी झलकती है और उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे ढींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तो भी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वो कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं। तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। देखिए, यहां भजन संहिता का रचने वाला का अनुभव भी आयुब से कितना मेल खाता है कि दुष्ट प्रायः फूलता फलता है। सत्य तो यह है कि कभी कभी तो वे बड़े समृद्ध हो जाते हैं। आयुब कहता है, उनकी संतान उनकी आंखों के सामने मगन होती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, उनके मावेशी वृद्धिमान होते हैं, वे समृद्ध होते हैं, उन्हें आशीषें मिलती है, वे परमेश्वर को धिक्कारते हैं। वे कहते हैं, मुझे परमेश्वर की क्या आवश्यकता, मैं सुख से हूं, मैं संतुष्ट हूं। भजन का लिखने वाला भी ऐसे ही देखता है। भजन संहिता 73:13-14 पद। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। परमेश्वर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं। दुष्ट का जीवन तो सुखी दिखाई देता है और यहां मैं वही कर रहा हूं जो उचित है, परंतु मैं समस्याओं से घिरा रहता हूं। सब कुछ ही गलत हो रहा है। मैं तो अपने खर्च ही पूरे नहीं कर पाता हूं। परमेश्वर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं, ये उसकी व्यक्तिगत राय है। भजन का रचने वाला लिखता है। भजन संहिता 73:16-17 पद। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। यही तो हमारी समस्या है कि हमारी सोचने की शक्ति बहुत सीमित है। हम वही देखते हैं जो प्रत्यक्ष है और इसी कारण हम ठोकर खाते हैं। मैं जीवन के प्रतिकूल पक्ष को नहीं समझ पाता हूं कि क्यों दुष्ट जन प्रायः फलते फूलते और धर्मी जन कष्ट उठाते हैं। मैं जीवन की इन विषमताओं को नहीं समझ पाता हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर भला है, वो धर्मी है। मैं जानता हूं कि वो निष्पक्ष है, परंतु भले और ईश्वर भक्त जन कष्ट क्यों उठाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। वे जो परमेश्वर का त्याग करते हैं और परमेश्वर को दिखाते हैं, प्रायः फूलते फलते हैं और हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीति होता है कि उन्हें उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं लगभग गिर ही चुका था। मैं चूकने ही वाला था कि मैं परमेश्वर के भवन में गया और मैंने देखा। क्या देखा? मैंने उनका अंत देखा। मुझे दूरदर्शी दृश्य दिखाई दिया। मैंने अनंत अवस्था देखी। मैंने वहां दुष्ट का अंत देखा और अब मैं दुष्ट से ईर्ष्या नहीं करता हूं। मैं उस दुष्ट से ढा क्यों करूं जो नरक में डाला गया है? परमेश्वर ने उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखा हुआ है। भजन का रचयिता कहता है, भजन संहिता 73:18 पद, निश्चय ही तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर नाश कर देता है। जब मैं उनका अंत देखता हूं तो उनसे ईर्ष्या नहीं रखता हूं। परमेश्वर के पवित्र स्थान में आना सबके लिए एक विशेष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हम अपने सांसारिक संबंधों में, जैसे अपने सेवा स्थलों, स्कूल आदि से क्षतिग्रस्त भावनाओं के साथ बड़ी दुखी आत्मा में रविवारीय आराधनाओं में आते हैं। इसका कारण यह है कि हम यहां परदेशी और यात्री हैं। ये संसार परमेश्वर से दूर और उसके विपरीत है। यदि आप परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भी संसार के लिए एक असंगत व्यक्ति हैं। जब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते हैं तब परमेश्वर की सहायता से हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाना चाहिए और मेरा अवलोकन समय की सीमा में बाधा न होकर कि मेरा बीता सप्ताह कैसा रहा है अनंत समय के परिप्रेक्ष्य में हो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। मैं शीघ्र ही प्रभु के साथ उसकी महिमा के राज्य में होऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसे जानता हूं। वो मुझसे प्रेम रखता है, उसने मुझे अपनी संतान बनाया है और मैं उसके साथ सदा सर्वदा वास करूंगा। इस प्रकार आपका दृष्टिकोण दूरदर्शी बन जाता है और आप इस संसार के संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्ति पाते हैं। अतः परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने से दृष्टिकोण फैल जाता है। यहां आयुब का दृष्टिकोण संकीर्ण है। ऐसा प्रायः तब होता है जब हम आहत होते हैं या हम पर कष्ट आते हैं। वो भी भजन के रचयिता के सदृश दुष्ट को देख रहा है और वो उनकी समृद्धि को भी देख रहा है, जिसके कारण वो अपने मित्रों के तर्क से सहमत नहीं है। वो उनका खंडन करता है कि वे यथोचित नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो सच नहीं है। आडंबर करने वाला गिराया नहीं जाता है। दुष्ट जन काट डाले नहीं जाते हैं। वे प्रायः अत्यधिक समृद्ध होते हैं और उनके जीवन में समस्याएं दिखाई ही नहीं देती है। आयुब अपने मित्रों के तर्क को गलत प्रदर्शित करने के लिए इन उदाहरणों को दे रहा है। अध्याय 21 पद 17 में अब आयुब को वास्तविकता का बोध होता है। अध्याय 21 पद 17 और 18। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है और परमेश्वर क्रोध करके उनके बाट में शोक देता है और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और भावंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। मुझे शक है कि दाऊद पहला भजन लिखते समय आयुब की पुस्तक के बारे में नहीं जानता था। आपको ध्यान होगा कि पद 4 में कहा है, भजन संहिता 1:4 पद, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ये पद उसने निश्चय ही आयुब की पुस्तक से लिया है। ऐसा लगता है कि दाऊद आयुब की पुस्तक को पढ़ चुका था। अध्याय 21 पद 19 और 20, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। दुष्ट अपना नाश अपने ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जल जलाहट में से आप पी ले। तब आयुब ने फिर कहा, अध्याय 21 पद 21 से लेकर 25 तक, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वो तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। ये अंतर क्यों है? कोई नहीं जानता है। ऐसा क्यों है कि किसी किसी को मरने तक कोई कमी नहीं रहती है और किसी किसी को मरने तक कष्टों का ही सामना करते रहना होता है। कुछ लोग बड़े कष्ट में मरते हैं और कुछ बड़ी शांति में मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अध्याय 21 पद 26 से लेकर 29 तक। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहां रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहां रहे, परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो? वो वास्तव में ये कह रहा है, तुमने सड़क छाप लोगों से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। अध्याय 21 पद 30 की विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। ये तो सत्य है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परंतु आवश्यक नहीं कि इस जीवन में। अध्याय 21 पद 31 से लेकर 34 तक। उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? तो भी वो कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं और ऐसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठी पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? तुम इस तर्कवाद से मुझे संतुष्ट कैसे कर पाओगे जबकि वे असंगत हैं? उनमें वास्तविक तर्क नहीं है, वे सत्य से कहीं भी मेल नहीं कर पाते हैं।